نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یہ آیت نمبر 183 میں نے ابھی تلاوت کی سورہ بقرہ کی. اس میں بالکل اچھا پرفیکشن اس کے ساتھ ہم لوگ الحمدللہ رمضان آگے آ رہا ہے. آج لاسٹ کلاس ہے تو اس حوالے سے رمضان کی ہی آیت چل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ بظاہر آرڈر کسی عام لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو آرڈر ہو رہا ہے. ایک بندہ پہلے ہی مسلمان ہے اس کو تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ سورہ حجرات کے اندر آتا ہے قولت العراب آمنا, یہ لوگ آگے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کل ان سے کہیں لا تؤمنو, تم ایمان نہیں لائے. ولاکن قولو اسلمنا, ٹھیک پڑھنا ایسے ہی ہے نا, ولاکن قولو اسلمنا, تم یہ بولو کہ تم صرف اسلام لائے ہو. لیکن ان تطیعوا اللہ و رسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہیں اجر مل جائے گا آخرت میں. لیکن جو ایمان والے ہوں گے اس کی نشانی آگے کیا آتی ہے کہ وہ تو پھر جاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے, اور ان کا ایک لیول الگ ہوگا جو ایمان والا ہوگا. صرف مسلمان بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ہو جائے گا, لیکن ایمان کے لیے پھر اور جذبہ زیادہ ہوگا ظاہر ہے. اسی لیے یہاں پہ اس کا معیار سمجھانے کے لیے اس کا طریقہ بتایا گیا ہمیں رمضان کی صورت میں بہترین, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ایک اینڈرز ایرکسن ایک سویڈش یہ سائیکالوجسٹ ہے, نام سنا ہوگا کبھی, بڑا مشہور سویڈش بون فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے. اس کی ایک اس نے ایک ریسرچ اور اس کے جو انالیسز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بہت مشہور ہیں, ورلڈ فیمس ہیں. اور اس کے خاص طور سے حوالے سے ایک اس کی جو ریسرچ ہے وہ ایک رائٹر ہے کینیڈین میلکم گلیڈویل, اس نے اس کے نام سے ایک بک لکھی ہے ایک آؤٹ لیئر. اس کے اندر اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے 10,000 hours ٹو سکسیس, اگر آپ غالباً اس سے واقف ہوں. اس کے اندر آپ غور کریں کیا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں فیلڈ ہے, کوئی بھی لائن ہے, کوئی بندہ آرٹسٹ ہے, کوئی بندہ فٹ بال پلیئر ہے, ساکر کھیلتا ہے, کرکٹر ہے, ٹینس پلیئرز ہیں, کوئی بھی دنیا کی لائن, ایک کک ہے, وہ اپنی فیلڈ میں پر رسپیکٹو فیلڈ میں ٹو ان آرڈر ٹو اچیو پرفیکشن اس کو ہی نیڈس 10,000 hours آف ہز لائف کہ وہ اس میں انڈلج کرے اپنے, تو جا کے وہ اس کی بالکل پیک کے اوپر پہنچتا ہے, بالکل ماسٹری کے اوپر آ جاتا ہے, پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ٹائیگر ووڈس کی مثال لے لیں, وہ 24 years میں دیکھنے کو بظاہر دنیا کا بیسٹ گولف پلیئر ہے, لیکن اس کی جو لائف کا جو وہ پیک ہے وہ آج سے نہیں اسٹارٹ ہوا, وہ تو بچپن سے 6 years کا تھا, اس کے باپ نے اس کو گولف کھیلنے کھڑا کر دیا تھا اور لگا دیا تھا. تو یہ 10,000 hours لگتے ہیں کسی بندے کو ایک میکسیمم اپنی پرفیکشن اچیو کرنے کے لیے, اور یہ وہ بہترین اس بک آؤٹ لیئرس کے اندر یہ تھیوری ہے, اور بہت لاجیکل اور اچھی تھیوری ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تتقون کے لیے ہمیں ایک تھیوری کیا بتائی کہ تم تقوی اختیار کرو, اور وہ کیسے آئے گا تمہارے اندر تقوی. عام بہت ساری ظاہر ریزننگ ہو سکتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں, لیکن عام ایک جنرل مسلمان کے لیے وہ تقوی کا اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ رمضان کی شکل میں ہمیں دے دیا اللہ نے. کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی میمل, کوئی اسپیسی ہے دنیا میں, کوئی بھی مخلوق ہے, اس کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ گھوڑے کو لے لیں, ابھی وہ تلاوت فرما رہے تھے نماز میں, والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً, یعنی اتنی اعلیٰ ترین ایک مخلوق ہے کہ اس کی قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے ایسا زبردست گھوڑے کے بارے میں کہ یہ جاتا ہے اور دشمن کے اس میں گھس جاتا ہے اور تیز بھاگنے والا اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا. والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحا فاثرنا بھی نقا الاخر السورہ, یہ اس کے اندر گھوڑے کی اللہ نے تعریف کی. اب اس گھوڑے کو ٹرین کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے, کبھی آپ سٹیبلز وغیرہ میں جائیں, کسی سٹیبل بوائے یا کسی اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس سے بات کریں, اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ دو کام کرتا ہے. وہ ایک کام یہ کرتا ہے کہ اس کو کھانا کم دے دیتا ہے, دینا شروع کرتا ہے, اور اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے, اس کے اوپر ویٹ ڈالتا ہے, اس کو ہیوی لفٹنگ کراتا ہے اس گھوڑے سے, اور اس کو فوڈ انٹیک کم دیتا ہے جب ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے. پھر وہ سلولی گریجولی آ کرتے 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 ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گھوڑا ٹرین ہو جاتا ہے, اپنے مالک کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے, اس حساب سے بیہیو کرنا شروع کرتا ہے. ہمیں بہترین مثال رمضان کی ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ پورا دن کھاؤ پیو بھی کچھ نہیں, اب رات میں بھی تراویاں وغیرہ پڑھو, پھر تہجد پڑھو, پھر ایٹسیٹرا. ہماری جو हमारे ऊपर बोझ है इबादत का वो ज़्यादा बढ़ गया। नमाजें तो पढ़नी है, साथ में तरावी भी पढ़नी है, नवाफिल में भी लगे हुए हैं, जो वैसे नहीं भी पढ़ते वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर तहज्जुद की भी पाबंदी शुरू अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोगों में हो जाती है, और एट्सेट्रा कुरान हो, जिक्र हो, तिलावत हो, एट्सेट्रा, ज़्यादा अब इबादत का बोझ हम पे पड़ जाता है। और फिर साथ में हमारा फूड इनटेक कम, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना 12-13-15 घंटे के करीब, तो इससे एक नेचुरल सा फिनोमेना ने क्या डेवलप होता है कि इंसान की ट्रेनिंग इससे होती है बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर जाके। और ये बेहतरीन मिसाल हमें बहरहाल अल्लाह ने दी इस रमज़ान की शक्ल में। तो वो 10,000 आवर्स के लिए अगर वी जस्ट लेट से कि आज हम रमज़ान से स्टार्ट करें तो प्रॉब्ली दिन में 24 घंटे से ऑनवर्ड टाइम्स 30 करें तो रफली कितना 500-600 घंटा तो बन ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का यहीं पे एक महीने के अंदर ही। तो इंसान बहरहाल यहाँ से ही स्टार्ट करे तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम तकवे के मयार के बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुँचने के लिए रमज़ान इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। इस वजह से ही अल्लाह ने हमें यहाँ पे ये कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए जब रोज़े रखोगे। तो उसके पीछे लॉजिक ज़ाहिर है बहुत सारी मुफस्सरीन ने और उलमा ने लिखी हैं। अयाम मादूदात, ये गिनती के दिन है। फमन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फ़ाइदतुम मिन अयामिन उखर, अगर कोई ज़ाहिर है मरीज़ है या कोई सफ़र में है, ट्रैवलिंग कर रहा है 72 माइल्स बियॉन्ड इस बॉर्डर ऑफ ए सिटी, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर रोज़े की कज़ा बाद में होगी, वो अयामिन उखर व दूसरे बाद में रोज़े की कज़ा कर ले, एक दफ़ा वो रोज़ा छोड़ सकता है, और ज़ाहिर है मरीज़ का भी यही ऑर्डर होगा। वल्लज़ीना युतीकुना फ़िदयतुन तआम मिस्कीन फ़मई, और जो इसकी भी ताकत ना रखे कोई बंदा, एक उसको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि आप रोज़ा रख ही नहीं सकते। अभी ये मेरे पास एक केस आया था, एक साहब पूछ रहे थे, वो बिल्कुल सीवियर कैंसर के, वो कीमोथेरेपी उनके ऊपर चल रही है और बिल्कुल प्रॉब्ली इन इज लास्ट स्टेजेस हैं, तो वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, उसका क्या ऑर्डर होगा? तो ज़ाहिर है उसके लिए अल्लाह ने फिर इतनी सी ज़ाहिर है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो वो फिर ये करे इसका कुफ़ारा जो फ़िदिया होता है, फ़िदयतुन तआमुम मिस्कीन, एक मिस्कीन को वो एक वक्त का खाना, दो वक्त यानी एक दिन का खाना खिलाए, फिर ये उसके लिए ऐसे बंदे के लिए जो रोज़ा रख ही नहीं सकता, ये उसका कफ़ारा हो जाएगा। फ़मन ततावा खैरन फ़हुवा खैरुन लहू, मगर बहरहाल फिर भी जो रोज़ा रखेगा वो उसके लिए बेहतर होगा, रोज़ा रखना में ही बेहतरी होगी, जाहिर है जो बंदा रख सकता है जितना मैक्सिमम, उसके जो मकाम है, जो उसका स्टैचर है, वो किसी सूरत नहीं मिल सकेगा। वन तसूम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, बहरहाल ये अगर तुम जानते होगे तो रोज़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरान के बारे में एक जगह आता है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अनज़लना ये भी आ रहा है अनज़ला उन्ज़िला, कहीं पे आता है तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान, नज़्ज़ला का लफ्ज़ भी कुरान के लिए आता है तनज़ील, ये सिर्फ इसमें एक सर्फ का एक वोकेबलरी का डिफरेंस है। उन्ज़िला युन्ज़िलु या इन्ज़ालन, ये लफ्ज़ जहाँ पे भी आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि एट वन इन वन गो नाजिल हो गया, और तनज़ील या नज़्ज़ला ये जो तजदीद के साथ जब आ रहा है वहाँ पे मतलब आ रहा है ग्रेजुअली नाजिल हो रहा है, गोया कि आज भी नाजिल हो रहा है। आप आज भी जाएँ आपके सामने इस आयत के आज भी मीनिंग्स खुल रहे हैं, लेकिन असल जो उलमा ने इसकी वजह लिखी है वो यही है कि नज़्ज़ला से मुराद ये होगी कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी थी उसमें ग्रेजुअली नाजिल होता रहा। लेकिन उन ज़िला का क्या मतलब है, वो आसमान से जो लोहे जो दुनिया के ऊपर जो वो लोहे कलम था या जो लोहे महफूज जिसे कहा जाता है वहाँ पे अल्लाह ने नाजिल किया, ये उन ज़िला या इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो उस एक रात में वहाँ पूरा कुरान नाजिल हो गया, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ, तो उसके लिए नज़्ज़ला या तंजील के अल्फाज आ रहे हैं। माइनर सा एक डिफरेंस है, और ये ज़ाहिर हिदायत है। और बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान कहते हैं जो बिल्कुल हक और बातिल को वाज़े कर देता है, इसीलिए उमर बिन ख़त्ताब को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ारूक उनका टाइटल इसीलिए है, वो हक और बातिल को बिल्कुल वाज़े कर दिए थे, इसीलिए कुरान का भी एक नाम फ़ुरक़ान है, बिल्कुल वाज़े कर देता है, फ़र्क कर देता है हक और बातिल में, सही और ग़लत में। और ज़ाहिर है आज भी, और ये तंजील मैंने सिर्फ इसलिए एम्फसिस किया क्योंकि आज भी आप कभी इसको इस मीनिंग में भी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, आप कुरान पढ़े होंगे और एकदम से आपके सामने कोई ऐसा मीनिंग खुलेगा, एक ऐसा आपके सामने इसके अंदर से कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे जो पहले आपको उस नहीं होगी, वही आयत आप रोज़ पढ़ते होंगे और आपको वो आयत उस तरह नहीं समझ आ रही होगी, जो एकदम से नया आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी। तो ये तंजील का प्रॉब्लम ये भी मतलब होता है, ये अभी नाजिल हो रहा है, गोया कि हमारे सीनों में आज भी उसी तरह उतर रहा है जैसे हज़ारों साल से उतर रहा है। शहीदा मिनकुम अश्शहर फलयुसिम, जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए उसके ऊपर ऑर्डर है कि वो रोज़ा रखे, तो इसके बारे में ज़ाहिर है कहीं ऐसा अगर रमज़ान आ रहा है, एक दफ़ा मेरे साथ ये केस हुआ, मैं 2-3 साल पहले जैम्बिया में था एतकाफ के लिए, और वहाँ से लास्ट डे बिल्कुल जब हम वहाँ से फ़्लाइट हमारी लुसाका से उड़ी, तो वहाँ पे अभी रमज़ान था, चांद नज़र नहीं आया था, चांद रात में 29th रोज़े को हम वहाँ से फ़्लाई किया मैंने। जब वहाँ से दुबई पहुँचे, 7.5 घंटे की फ़्लाइट थी, वहाँ रात को गालबा 9-9:30 बजे हमारी फ़्लाइट उड़ी है। तो दुबई भी जब हम लैंड हुए हैं एमिरेट्स पे, तो वहाँ पे ईद थी, वहाँ चांद नज़र आ गया था, और एयरपोर्ट पे ये कोई बंदा रशिया जा रहा था पाकिस्तानी, उसने कहा अब हमें ईद की नमाज़ पढ़ा दे, हम 3-4 मौलवी टाइप लोग थे, तो हमने कहा यहाँ तो एयरपोर्ट पे तो ईद की नमाज़ हो ही नहीं सकती, आप खुद ही ऐसी नफल पढ़ लें, बहरहाल लेकिन वहाँ ईद थी तो हम रोज़ा रख नहीं रख सकते थे। लेकिन 2 घंटे बाद हमारी कराची फ़्लाइट थी 8 बजे, अब हम कराची लैंड हुए तो यहाँ रमज़ान चल रहा था, तो हमने जो फुकाए कराम या मुफ्तियान से कुछ पूछा, उन्होंने कहा अब आप पाकिस्तान लैंड होने के बाद कुछ खा पी नहीं सकते क्योंकि आप रमज़ान का महीना पा रहे हैं, आपने अभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है और यहाँ पहुँच के आप अभी रमज़ान का महीना दोबारा पा रहे हैं, तो शहीद मिनकुम शारफ अली उससे वाली आयत आपके ऊपर और लागू हो गई कि आप रमज़ान का महीना पा रहे हैं, टेक्निकली आप रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि दुबई में रोज़ा ही नहीं था, तो आपने स्टार्ट नहीं किया, अब यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते थे लेकिन कुछ खा पी भी नहीं सकते थे क्योंकि महीना हमने रमज़ान का पा लिया, तो हमारे ऊपर ऑर्डर किया था अब हम कुछ खाएं पिए नहीं इसके एहतराम में। बहरहाल ये इस आयत के ऊपर फिर फुका के बहुत सारे इख्तलाफात और बहुत डिटेल में आप किताबों में जाएंगे, तो जैसे एक ही एग्जांपल मैंने दी, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ से चला वहाँ पे रमज़ान था या नहीं था एटसेट्रा एटसेट्रा।
और अगर कोई एक कमी रह भी जाती है फर्ज करें तो वो आप पूरी करते बाद में,
वो बाद में पूरी कर दें,
आपके 28 होते हो यहाँ भी ईद हो जाती
है, वो बाद में फिर ईद के बाद, ईद वाले दिन नहीं हम रख सकते, सेकेंड डे से थर्ड डे हम फिर पूरी करेंगे। तो इस आयत से बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, लेकिन मेन जो मसला आपको समझ आ रहा है, फमन शहीदा मिनकुम शहरा, ये महीना जो पाएगा तो फली उसम, ये ऑर्डर है अमर का सीधा, उसके ऊपर लाजिम है रोज़ा रखना, वो खा पी नहीं सकता जो इस महीने को पाएगा, इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है डिटेल में हर तरह की आपको ओपिनियंस मिलेंगे। अमन का ना मरीज़ ना वाला सफ़र इन फ़ायदा तो मिन आयाम नुखर, ये वही बात आ रही है, अगर कोई मरीज़ है या सफ़र है तो उसके ऊपर बाद में इसकी कज़ा होगी। युरीदुल्लाह बिकुमुल युसरा वला युरीद बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर युसर कहते हैं आसानी को, अच्छाई को, नेक या ईजीनेस को, कन्वीनियंस को, अल्लाह तुम्हारे लिए कन्वीनियंस करता है। वला युरीद बिकुमुल उसरा, वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई उसर, कोई तंगी, कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो, उसर मुश्किल को कहा जाता है। तो ज़ाहिर है क्योंकि अगर कोई नहीं रख सकता तो वो बाद में रख ले, यही मतलब है, इसलिए अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल लाने का इरादा नहीं करता बल्कि आसानी का इरादा करता है। वली तुकमिल्दत फली तकबरल्ला हदाकुम वल्लाकुम तशकुरून, बहरहाल ये वही बात हो रही है कि बाद में करे और अल्लाह की तकबीर करे, तस्बीह बयान करे और उस बात पर अल्लाह का शुक्र करे, अलामा हदाकुम, जिस पे अल्लाह ने हिदायत दी है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अब देखें इसके बीच में जो नेक्स्ट आया था, ये हालांकि टेक्निकली इसका ताल्लुक स्पेसिफिकली रमज़ान से नहीं है, लेकिन ये रमज़ान के, ये एक रुकू रमज़ान की आयतों के लिए चल रहा है, इसके अहकामात चल रहे हैं, बीच में एक अल्लाह आयत लाए। उसकी वजह क्या है कि अगर अब आपने रमज़ान के रोज़े रख रही हैं, आपने इबादत की हैं सारी, इतनी मेहनत की है, तो फिर आगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका रिज़ल्ट अल्लाह ने बताया, वैजा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब कोई ये लोग पूछते हैं अच्छा अल्लाह कहाँ है मेरे बारे में पूछते हैं, तो इनको बोलो मैं तो बहुत ही करीब हूँ, उजीब दावत दाई इज़ादान, जो मुझे पुकारने वाला है मैं उसको बिल्कुल उसको जवाब देता हूँ। फल यस्तजीबुनी वल युमिनू बी लअल्लकुम यरशुदून, ताकि इनको चाहिए कि मुझे पुकारते रहें और मुझ पर ईमान लाते रहें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये अकल वाले, ये रुश्द वाले लोग बन जाएं। रुश्द कहते हैं हिदायत को, अंडरस्टैंडिंग को। एक चीज़ खाली इल्मी नुक्ता मैं आपको जिक्र करता हूँ, वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़ैनी करीब, ये कुरान का लैंग्वेज देखें, अल्लाह क्या कह रहे हैं आपसे, खिताब कर रहे हैं इसके पढ़ने वाले से, या असल खिताब ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो वाइजा साला का, जब ये लोग आपसे सवाल करें, इबादी मेरे लोग जब आपसे सवाल करें, अन्नी मेरे बारे में, पहला जुमला क्या है, वाइजा साला का इबादी अन्नी, ये लोग आपसे सवाल करें मेरे बारे में, पहले बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे से कोई दूसरा पूछ रहा है, मैं मुझसे कोई सवाल करे अल्लाह के बारे में तो मैं क्या बोलूँ उसको, फिर बीच में से वास्ता अल्लाह ने हटाया और डायरेक्ट ख़ुद फाइन नहीं करीब, मैं तो बहुत करीब हूँ, जिसको कहा जा रहा था कि ये आपसे सवाल करें उसको भी जवाब देने के लिए नहीं कहा, जवाब अल्लाह ने ख़ुद दिया, फ़ा इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। इससे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह इतना करीब है, यानी वो हम कहते हैं शहरक से भी ज़्यादा करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो इसीलिए सवाल ये लोग आपसे कर रहे हैं, जवाब मैं ख़ुद दे रहा हूँ। ये उलमा ने इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत डिटेल लिखी है। एनी वेज़ उहिल्ला लकुमुल लैलतस्सियाम रफ़ज़ इला रिसाइकुम, पहले ये होता था कि रोज़ों की हालत में जो ज्यूज़ का ख़ास तौर से रोज़ा था उसमें रमज़ान में औरतों के पास जाना या इवन रात को भी खाना पीना अलाउड नहीं होता था। जब कोई बंदा सो गया रात को, उसके बाद से ऑनवर्ड्स वो उठेगा तो उसका रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा, वो कुछ खा पी नहीं सकता। तो एक सहाबी के मुझे नाम इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा, उनके साथ ये हुआ, वो घर आए, उन्होंने बीवी को बोला मुझको मुझे कुछ खाने को दो, और इसी दौरान वो बैठे हुए थे और वो सो गए, उनकी आँख लग गई। अब वो उठे तो नेचुरली उस वक्त के रूल्स क्या थे कि अब आपने रोज़ा फ़ौरन रखना है और अब आपका रोज़ा होगा, अब आप कुछ खा पी नहीं सकते। तो जो ऑर्डर है वो ग्रेजुअली, नमाज के बारे में भी ग्रेजुअल ऑर्डर आए, पहले सिर्फ तहज्जुद की नमाज थी या एट्सेट्रा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़र्ज़ हुई। इसी तरह रोज़ों के बारे में भी तीन डिफरेंट स्टेजेस थी, पहले रोज़े सिर्फ वो 14, 15, 16 वाली जो महीने के 3 दिन होते थे, उस दिन भी वो भी नफली रोज़े होते थे। फिर जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ सेकेंड कैटेगरी में, वो आशूरा का रोज़ा था, जो यौम आशूरा के दिन जो ज्यूज़ रखते थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा तो ज़्यादा हक है हम इस दिन रोज़ा रखें। और फिर बाद में उन्होंने कहा अगर मैं नेक्स्ट ईयर ज़िंदा रहा तो मैं 9th का रोज़ा ऐड कर लूँगा साथ में, सिर्फ 10th को नहीं रखूँगा ताकि ज्यूज़ की मुशाबियत ना हो जाए। बहरहाल वो नहीं हुआ, लेकिन 10th का रोज़ा इतना ज़्यादा फ़र्ज़ था बाकायदा उस ज़माने में, फिर वो बाद में हट गया और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। एनीवेज तो वो रूल्स डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पे भी यही रूल था। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि औल्ला लकुमुल लैलतस्सियाम, अब रात को बेशक जब रोज़े की टाइमिंग्स नहीं है तो औरतों के पास भी जाया जा सकता है। हुन्ना लिबासुल्लकु, देखिए हुन्ना सीगा है, हुन्ना वो औरतें, हुन्ना लिबासुल्लकुम तुम्हार, कुम तुम है, वअंतुम लिबासुल्लहुन्ना, हुन्ना अगेन वो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम वआफा अन्कुम फ़लाना बाशरुहुन वब्तगू मा कतबल्लाहु वकुलू वश्रबू हत्ता। ये देखें, ये जो मैंने अभी ज़िक्र किया था उस सहाबी का वाकया, उनके लिए फिर ये आयात के अंदर ऑर्डर नाजिल हुआ, कुलू वश्रबू हत्ता यतबैना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र, यहाँ उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक कि रात की धारी, इसको खैत कहते हैं धागे को वैसे, थ्रेड को, तो रात का जो थ्रेड है वो खैतुल अबयज़ु, दिन का थ्रेड यानी सफ़ेदी का थ्रेड जो है वो काले के थ्रेड से टेक्निकली अल्फाज का तर्जुमा ऐसे बनेगा, अलग ना हो जाए फजर में। लेकिन असल मतलब यह है, कभी आप किसी ऊपर टॉप पे कभी जाके खड़े हो अगर हाइट पे तो आप उसको देख सकते हैं, या किसी शहर से बाहर कहीं ओपन एरिया में हो तो देख सकते हैं, जब बिल्कुल फजर का टाइम स्टार्ट होता है तो एक लाइन बिल्कुल रेड जो है वो ब्लैक और वाइट को बिल्कुल डिस्टिंग्विश करती है, वहाँ से पता लगता है कि फजर का टाइम दाखिल हो गया है। और फिर जब वो रोशनी आसमान के ऊपर छा जाती है तो फजर का टाइम कज़ा हो गया है। तो ये खैतल अबियस से मुराद वही है, हातिम ताई का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस अरबी एक वो थे ट्रैवलर, और वो उनके बेटे थे अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अनु, वो फिर मुसलमान हो गए थे बाद में, बहुत बड़े अरब कबीले के सरदारों में से सरदार थे, ज़ाहिर हातिम ताई के बेटे थे। तो यानी टेक्निकली ही वॉज़ अ मास्टर ऑफ अरबी के जो ग्रामर और पोइट्री और प्रोज, उसके मास्टर थे वो। वो एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा रखने के बारे में ये ऑर्डर आ रहा है। तो वो क्या करते थे उस ज़माने में सहाबा के, एक काला धागा लेते थे और एक वाइट धागा लेते थे, उसे अपने तकिए के पास रख लेते थे और फिर उठ के उसको यूँ देखते थे कि ये ब्लैक है ये वाइट है, और जब वो डिस्टिंग्विश कर लेते थे उसके दरमियान कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, तो उसका मतलब होता था रोज़ा रख लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कराए जब उन्होंने पूछा कि इसका ये मतलब है, उन्होंने कहा नहीं, इस आयत का ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर ब्लैक थ्रेड आसमानों के ऊपर, आसमान पर वो थ्रेड ब्लैक जो है वो वाइट से अलग ना हो जाए, उस वक्त से रोज़ा स्टार्ट होगा। सुम्मा अतिमुस सियाम अल-लैल, फिर रात तक रोज़ा होगा, वला तुबाशिरूना अंतुम आकिफून फिल मस्जिद, और यही औरतों के पास जाना एतकाफ़ में ख़ास तौर से मना होगा। आजकल भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं औरतों के मस्जिद जाने के ऊपर और नमाज़ पढ़ने पर, और इवन बाज़ मसाजिद में एतकाफ़ के लिए भी जा रहे हैं। इस आयत से ख़ास तौर से इसका पता लगता है कि ये भी मुनासिब अमल नहीं होगा, एतकाफ़ की हालत में ख़ास तौर से इससे परहेज़ ज़रूरी होगा, क्योंकि तिल का हदूदुल्लाह वला तकरबूहा, इसके करीब भी मत जाओ। करीब भी जाने का मतलब ही यही है कि ऐसी जो इसको कहते हैं दाइया इलल इस्म, जो भी होता है इसकी तरफ जो बुलाने वाला काम है उससे भी दूर रहा जाए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, अगेन यत्तकून के ऊपर ये टेक्निकली टॉपिक करा इसका ख़त्म होता है। अगेन ये स्टार्ट भी यत्तकून से हुआ था, कि इसी इस वजह से अल्लाह ये आयतें तुम्हारे ऊपर बयान कर रहा है तुम लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि ये तकवे वाले बन जाएं। और वला तअकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तदलु बिहा इलल हुक्काम लितअकुलु फरीकम मिन अमवाल الناس بالاسم وانتم تعلمون। इसका ये रमज़ान से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब खाली यही है कि लोगों का माल एक दूसरे के यानी हड़प ना करो और बातिल तरीके से ना खाओ, और अगर कोई मसला है भी हुकाम के वाले ताक फरीकम मिन अमवाल الناس بالاسم وانتم تعلمون, इसका ताल्लुक रमज़ान से नहीं है, इसके ऊपर बाद में बात इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे। इस हवाले से अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।